आईएएस की तैयारी करने वाले मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं अपने प्रिय श्रोताओं को एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, और खासकर यह सूचना छत्तीसगढ़ में रहने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए है। सूचना यह है कि 19 तारीख को, अभी 19 अप्रैल को, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हम लोगों ने एक लेक्चर रखा है। मेरा लेक्चर होगा सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के बारे में, यह लेक्चर होगा, और यह लेक्चर 19 तारीख को सुबह 10 बजे होगा। सुबह 10 बजे, और 10 बजे से लेकर के 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक, जब तक स्टूडेंट बातचीत करना चाहेंगे, बातचीत होती रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी इसका स्थान निश्चित नहीं हो पाया है। स्थान निश्चित होते ही मैं आपको इस बात की सूचना दूंगा। लेकिन इस बीच में 4 दिनों की छुट्टी है, कल से लेकर के रविवार तक छुट्टी है, यानी कि स्थान को जानने के लिए आपको सोमवार के डेली ऑडियो लेक्चर की प्रतीक्षा करनी होगी। उसमें मैं स्थान निर्धारित होने के बाद आप सबको इसकी सूचना दूंगा। लेकिन यदि आप जानना ही चाहते हैं इससे पहले, तो लेक्चर कराने का यह जो दायित्व है, बिलासपुर में एक श्री बुक डिपो है, वहां के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किताब की यह बहुत बड़ी दुकान है, हाई कोर्ट रोड पर यह शॉप है, वहां जाकर आप पता कर सकते हैं। हो सकता है कि एकाध दिन में ही वेन्यू निश्चित हो जाए। अब फ्रेंड्स, मैं दो बातें यहां फिर से बताना चाहूंगा। पहला तो यह है कि 19 तारीख को, यानी कि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए, इस पर हम लोगों ने लेक्चर का आयोजन किया है सुबह 10 बजे, लेकिन वेन्यू अभी निश्चित नहीं है। वेन्यू जानने के लिए प्लीज आप सोमवार का जो डेली ऑडियो लेक्चर होगा उसे जरूर सुने। दोस्तों, जहां तक मुख्य विषय की बात है, तो आज के मुख्य विषय के तहत भी हम लोग जो महत्वपूर्ण घटनाएं इस बीच की हैं उन्हीं पर कुछ बातें करेंगे, क्योंकि घटनाएं अभी बहुत ज्यादा हैं, कुछ पिछली घटनाओं की भी चर्चा करनी है, तो फिलहाल किसी विषय को लेकर के चलने की स्थिति नहीं बन पा रही है। आज का अखबार आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो है तो बड़े छोटे रूप में, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जाननी चाहिए, और खासकर यदि आप मेंस भी क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी खबर है कि जो मार्च में रिटेल महंगाई की दर है, खुदरा महंगाई की दर, वो बहुत ज्यादा हो गई है, लगभग 7% के आसपास। एक महीने में 7% महंगाई बढ़ जाना, यानी कि 100 रुपए की चीज का 107 रुपए हो जाना, कल्पना करके देखिए कि यदि यह दर बनी रहती है तो एक साल में महंगाई की दर क्या हो जाती है। दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति अर्थशास्त्र की भाषा में। मैं अपने ऑनलाइन के स्टूडेंट को, और अभी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हमारे यहां आए हुए थे, उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इस विषय पर हम लोगों ने बहुत विस्तार के साथ बातचीत की है, क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बहुत बड़े केंद्र में यह महंगाई वाला विषय होता है। इसलिए फिलहाल मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस खबर को ध्यान से पढ़ें, और इससे संबंधित यदि आपको आगे चलकर के एडिटोरियल कमेंट या एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ने को मिले तो आप उन्हें भी पढ़ें। और पढ़ना नहीं है, याद भी केवल नहीं रखना है, बल्कि उसे समझने की कोशिश करना है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां निर्मित हो रही हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ यह भी कि अगर ये सब चीजें इसी तरह से होती रहीं तो उसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। इसे आप ध्यान से जानने और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, एक छोटी सी बात सही, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बात कही है, और उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जी के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर विश्व व्यापार संगठन, जिसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यदि अनुमति दे तो भारत दुनिया को खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकता है। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है, और यह भारत की ताकत और किसानों के समर्पण को दिखाती है कि भारत दुनिया को खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकता है। और आप जानते हैं कि खासकर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से दुनिया खाद्यान्न के बहुत जबरदस्त संकट से गुजर रही है, क्योंकि जो रूस था, गेहूं निर्यात करने वाला बहुत बड़ा देश था। अब आप देखें कि प्रधानमंत्री का यह कहना दो बातों को स्पष्ट करता है। पहला तो यह है कि हमें विश्व की चिंता है, और हम जब कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसे पूरा करने की भी स्थिति दर्शाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे जो भारतीय किसान हैं उनकी शक्ति को दर्शाता है, उनके समर्पण को दर्शाता है। आप देख रहे हैं कि भारत में किसी प्रकार से जो कृषि का कार्य है वो फायदे का काम नहीं रह गया है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग डेली कृषि कार्य छोड़ करके दूसरे दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं। इसके बावजूद भारत खाद्यान्न उत्पादन में इतना अच्छा कर रहा है, और खासकर इस कोविड के दौर में। आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले रखने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर पिछले 2 सालों से। तो दोस्तों, यूं कह लीजिए कि यह भारत की वैश्विक शक्ति का कहीं ना कहीं इजहार है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। खासकर कृषि पर 2-3 प्रश्न हर साल मेंस में पूछे जाते हैं, और आपको चाहिए कि आप किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को कोट कर सकें। फ्रेंड्स, जो अगली एक खबर है वो विशेषकर भास्कर में एक एडिटोरियल कमेंट पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस जिन्हें जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने एक बार फिर से सीबीआई के ऊपर कमेंट किया है। ये पहली बात नहीं है, सीबीआई लगातार संदेह के घेरे में रहा है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसे पिंजड़े में बंद तोता, साफ साफ अपने एक फैसले में ये बात उन्होंने कही थी कि ये पिंजड़े में बंद तोता है। पिंजड़े में बंद तोते का मतलब है कि जो कुछ सरकार कहती है ये करती है, जबकि उम्मीद की जाती है कि इस तरह की जो जांच एजेंसी है वो बहुत ही तटस्थ होकर के बहुत ही निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। लेकिन यदि उसी की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ जाए तो फिर जो लोकतंत्र की विश्वसनीयता है सच पूछे तो वही एक प्रकार से संदेह के घेरे में आ जाती है। और अक्सर ये देखा गया कि सरकार चाहे जिस भी राजनीतिक दल की हो, इस संस्था का इस्तेमाल वे अपने राजनीतिक हितों के लिए करते हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत साफ साफ तौर पर कहा कि अगर इसे अपनी साख को बचाना है, तो अपने विश्वास को पुनर्स्थापित करना है, तो राजनीतिक नेताओं के साथ जो इसका गठजोड़ है, जो एक दुर्लभ गठबंधन है, उसे तोड़ना होगा। और उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि यह संस्था गहरी जन समीक्षा के दायरे में है। उन्होंने शब्द यूज किया है गहरी जन समीक्षा के दायरे में है, यानी कि लोग अब इसके बारे में सोचने लगे। केवल कानूनी दायरे की बात नहीं है, गहरी जन समीक्षा के दायरे में है, और इसके कुछ कार्य और अकर्मण्यता ने इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दोनों चीजें हैं, एक तो अकर्मण्यता, जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव नहीं होती है, और दूसरा जब वो एक्टिव होकर के कुछ केस हैंडल भी करती है तो ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रख रही हो, खासकर सरकार के समर्थन में वह खड़ी हुई दिखाई देती है। फ्रेंड्स, इसके लिए डेफिनेटली जो हम एक सिस्टम तैयार करते हैं वह भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जो सीबीआई है, सीबीआई हमारी संवैधानिक संस्था नहीं है, तो जिस तरीके से सीबीआई के प्रमुख का चयन होता है, वहां जिस तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर होते रहते हैं, उसे पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है। अगर हम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करें, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को तो बहुत ज्यादा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होते हैं, आप उन्हें आसानी से नहीं हटा सकते, उनकी सुविधाओं में कटौती नहीं कर सकते, लेकिन जो कानून के आधार पर संस्थाएं निर्मित होती हैं उन्हें इस तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यदि हम सीधे सीधे सीबीआई के अधिकारियों के पक्ष में जाकर के देखें, उनकी तरफ से देखें, तो उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार की तरफ से देखें तो उनके अपने दबाव होते हैं। इन दबावों और अपनी व्यवस्थाओं के बीच में कोई भी संस्था या कोई भी अधिकारी कैसे संतुलन बनाए रख पाता है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती उनके सामने होती है। और बहुत से ऐसे अधिकारी हुए हैं जिन्होंने इस तरह की चुनौतियों का सामना बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी निर्भयता के साथ किया है। तो आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए खासकर ऐसी स्थिति में, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इन सब स्थितियों के बारे में फिर पूछने लगते हैं कि फिर क्या हमारा निष्कर्ष होना चाहिए, हमारा क्या उत्तर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह कमेंट है, तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और अगर मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और यहां तक कि अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपका जो एक निष्कर्ष होना चाहिए मुझे लगता है वह है पद के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जो दायित्व होना चाहिए उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कोई भी सीबीआई का प्रमुख है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, नौकरी से तो उन्हें निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट को संवैधानिक संरक्षण तो प्राप्त है, संस्था को भले प्राप्त न हो। आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि माना यह जाता है सिविल सर्विस में कि जो ट्रांसफर है वो कोई सजा नहीं है, है ना, वो तो एक व्यवस्था है। तो ठीक है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यदि सिविल सर्वेंट अपने अंदर यह दृढ़ता ले आए तो संस्था अपनी साख को फिर से प्राप्त करने में सफल हो सकती है। मुझे लगता है कि यह आपका निष्कर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वे 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं। इसके लिए हमारे 5 नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और मजेदार बात यह है कि इनमें 5 में से 4 जो युवा हैं वो एक ही गाँव के हैं, एक ही गाँव के, और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और खासकर इन 4 युवाओं ने जो ये निर्णय लिया है, मैं इस रूप में उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि जब आप एक ही स्थान से एक साथ जब कुछ युवा आते हैं तो यहां से आप जो लेकर जाएंगे, एक जैसा लेकर के जाएंगे, तो बड़े आराम से आप ग्रुप बना करके डिस्कशन कर सकते हैं और जो कुछ भी यहां बताया जाएगा उसका अधिकतम लाभ कमा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और आप लोगों के इस निर्णय की मैं बहुत ही मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। दोस्तों, ये जो 4 नौजवान साथी हैं, इनका गांव है तरवन, इनका जिला है गया और राज्य है बिहार। इन 4 दोस्तों के नाम हैं रोशन कुमार, रानी प्रतिभा, अमित कुमार और रूपाली भारती। और 5वें जो दोस्त हैं वो है रुद्र प्रताप सिंह, जो कप्तानगंज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो रोशन, रानी, अमित, रूपाली और रुद्र प्रताप, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं अमित कुमार सिंह कोची से, प्रियांशी भारद्वाज अलवर राजस्थान से और नांदी रावल अहमदाबाद से, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इस बीच में 4 दिनों की छुट्टी है, 4 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, सोमवार को फिर बातें होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।